पृष्ठ संख्या 251। दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन। घाना और गिनी, दक्षिण अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका के अधिकांश देशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों के दौरान की गई। साम्राज्यवादी देश अब यह समझने लगे थे कि अब वे अफ्रीका पर अधिक दिनों तक अपना प्रभुत्व कायम नहीं रख पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले घाना, पहले गोल्ड कोस्ट को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। घाना में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व क्वामे एनक्रूमा ने किया। वह अफ्रीकी राष्ट्रवाद का एक अप्रीतम नेता था जिसने अफ्रीकी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संगठित करने तथा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता कायम करने और विश्व के मामलों में अपनी राष्ट्रीय प्रभुता तथा स्वतंत्र भूमिका का आग्रह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में उसने कन्वेंशन पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी। 1956 में इस दल के चुनावों ने में 70% से अधिक स्थान प्राप्त किए और 6 मार्च 1957 को गिनी स्वतंत्र हो गया। 1958 में घाना, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला फ्रांसीसी उपनिवेश था। अफ्रीका का वर्ष 1960 में अफ्रीका के 17 देश स्वतंत्र हुए। इसी कारण इस वर्ष को अफ्रीका का वर्ष कहा जाने लगा। इनमें से 13 फ्रांसीसी उपनिवेश थे। यह 17 देश थे: मौरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, अपर वोल्टा, अब बुर्किना फासो, नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, केमरून, गेबोन, कांगो, पहले फ्रेंच कांगो, कांगो गणराज्य, पहले बेल्जियम कांगो, जिसका नया नाम दिया गया और 1997 तक इसे जायर कहा गया। मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, सोमालिया और मेडागास्कर। 1960 में अफ्रीका में साम्राज्यवाद विरोध की जो लहर उठी थी उससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन भी प्रभावित हुए थे। मार्च 1960 में अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों का दौरा करते समय उसने अफ्रीकी महादेश में चल रही परिवर्तन की हवा के बारे में बोलते हुए कहा था कि चाहे हमें पसंद हो या नहीं, किंतु राजनीतिक जागरूकता में दिखाई देने वाला यह वृद्धि एक राजनीतिक तथ्य है और हमारी राष्ट्रीय नीतियों में इस तथ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। कीनिया में संघर्ष। ब्रिटिश साम्राज्य काफी समय से परिवर्तन की हवा कि इस हवा को रोकने की कोशिश कर रहा था। कीनिया में राष्ट्रवादी आंदोलन 1920 के दशक में आरंभ हो चुका था। इस दौर में जोमो केन्याटा नाम का एक बड़ा नेता उभर कर सामने आया। 1943 में कीनिया अफ्रीका यूनियन का गठन किया गया जो बाद में कीनिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन में बदल गया, जिसका नेतृत्व जोमो केन्याटा के अतिरिक्त ओडिंगा ओगिंगा ने भी किया। 1952 में कीनिया में माऊ माऊ विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह प्रमुख रूप से विकुयु काबिले के किसानों का विद्रोह था जिनकी जमीनें ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने छीन ली थी। कुछ पश्चिमी लेखकों ने माऊ माऊ विद्रोहियों को आतंकवादी कहा है जिन्होंने अमानवीय अत्याचार किए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अत्यधिक निर्ममता के साथ दबा दिया जिसमें 15,000 कीनियाई लोगों को अपनी जान के साथ हाथ धोना पड़ा। 1953 में केन्याटा में गिरफ्तार कर लिए गए और उसे माओ माओ विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में 7 वर्ष का कारावास दे दिया गया। पूरी दुनिया में ब्रिटेन द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए उसकी निंदा की गई और उसे अपनी दमन की नीति छोड़नी पड़ी। 1961 में केन्याटा आज़ाद कर दिया गया। 12 दिसंबर 1964 को कीनिया एक गणतंत्र बन गया और जोमो केन्याटा उसका प्रथम राष्ट्रपति बना। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन का अंत। अफ्रीका में शेष बचे अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेश 1960 के दशक में स्वतंत्र हो गए। 1961 में तंजानिया, पहले का टांगीनाका और जंजीबार और सियरा लियोन, 1962 में युगांडा, 1964 में जाम्बिया, पहले का उत्तरी रोडेशिया और मलावी, पहले का न्यासीलैंड, 1965 में गैम्बिया और बोत्सवाना, स्वाजीलैंड तथा लेसोथो, 1968 में आज़ाद हुए, 1962 में रुआंडा और बुरुंडी स्वतंत्र हो गए, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही बेल्जियम शासन के अधीन थे। 1960 के दशक का अंत होते होते अफ्रीका के अधिकांश देश आज़ाद हो चुके थे। अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी बिसाऊ और केप वर्दे द्वीप समूह के पुर्तगाली उपनिवेशों में 1960 के बाद भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रहा। यह सभी देश 1970 के दशक में आज़ाद हो गए। नामीबिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेश बना हुआ था, 21 मार्च 1990 को स्वतंत्र हो गया। जिम्बाब्वे, एक अन्य देश जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, वह जिम्बाब्वे, पहले दक्षिणी रोडेशिया था। यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन 1965 में इयान स्मिथ के नेतृत्व में वहां रहने वाले गोरे उपनिवेशियों ने इस देश की सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस देश को स्वतंत्रता प्रदान किए जाने की आशंका से चिंतित हो उठे, क्योंकि ऐसा होने से देश पर काले बहुसंख्यकों का शासन स्थापित हो जाता। यहाँ दक्षिण अफ्रीका की तरह एक गोरी अल्पसंख्यक सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार को दक्षिण अफ्रीका ने समर्थन प्रदान किया और एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल के कहने पर अधिकतर देशों ने दक्षिणी रोडेशिया पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू कर दिए। दक्षिणी रोडेशिया में एक शक्तिशाली गुरिल्ला आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन को पड़ोसी अफ्रीकी देशों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और समाजवादी देशों से सहायता मिली। अल्पसंख्यक गोरी सरकार को जब यह एहसास हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के समर्थन के बावजूद वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही लड़ाई दबाने में कभी सफल नहीं होगी, श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने घुटने टेक दिए। 1980 में दक्षिण रोडेशिया में चुनाव हुए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे गोरा हो या काला, एक वोट देने का अधिकार था। राष्ट्रीय दलों ने भारी बहुमत प्राप्त किया और देश स्वतंत्र हो गया, जिसका नाम जिम्बाब्वे रखा गया। रॉबर्ट मुगाबे सरकार का प्रमुख बना, जिसे 1986 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में आयोजित सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया। अफ्रीका में साम्राज्यवाद की समाप्ति की प्रक्रिया को समाप्त करने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन की स्थापना 1963 में आदिस अबाबा में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन पैन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में की गई थी। 1960 के दशक में अफ्रीकी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में इस सम्मेलन ने विशेष भूमिका निभाई। अपना प्रभाव कायम रखने के लिए औपनिवेशिक शक्तियों के प्रयास, ऊपर जिन देशों का उल्लेख है उनमें से किसी भी देश को आसानी से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। अधिकतर मामलों में उपनिवेशवादी शक्तियों ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता घोषित करने के बावजूद अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास किया। इन शक्तियों ने विशेष रूप से ऐसे कुछ देशों में अधिक प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जहां उपनिवेशवादी देशों या उनके समर्थकों ने यह सोचा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर उनके देश में उपनिवेशवादी शासन के स्थान पर ऐसी सरकार कायम होगी जिसमें आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। गयाना, 1953 में ब्रिटिश गयाना, अब गयाना में एक नए संविधान के अंतर्गत चुनाव कराए गए, जिनमें प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 25 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। डॉक्टर छेदी जगन और हॉवर्स वर्नहम के नेतृत्व में चल रही पार्टी गयाना की प्रमुख साम्राज्यवाद विरोधी पार्टी थी और इसे सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय मूल के और काले लोग शामिल थे। छेदी जगन प्रधानमंत्री बना और उसने आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए, लेकिन 4 ही महीने बाद ब्रिटिश शासकों ने सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और संविधान को स्थगित कर दिया गया। वहां ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए और पीपीपी के नेता जगन तथा वर्नहम को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब साम्यवाद को दूर रखने के नाम पर किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने गयाना में नस्ली झगड़े पैदा कर दिए और पीपीपी में विभाजन हो गया। 1957 के चुनावों में डॉक्टर जगन की पार्टी फिर विजयी हुई और उसने अपनी आज़ादी की मांग तेज कर दी। फिर 1961 के चुनावों में भी इसी दल को बहुमत मिला, लेकिन सरकार को कोई भी आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया गया और नस्ली उपद्रवों और हिंसा को बढ़ावा दिया जाने लगा। 1964 के चुनावों में वर्नहम की पार्टी को पीपीपी से, जिससे कि वह अलग हो गई थी, कम मत प्राप्त हुए। फिर भी एक दूसरे दल से गठबंधन करके वह गयाना का प्रधानमंत्री बन गया। 1966 में गयाना स्वतंत्र हो गया और वर्नहम पहले उसका प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बना। 1992 के चुनावों में डॉक्टर छेदी जगन को राष्ट्रपति चुना गया। कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में पहले जायर और उससे भी पहले बेल्जियम कांगो में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व पैट्रिस लुमुम्बा ने किया, जिसने नेशनल कांगोलीज मूवमेंट, कांगो वासियों का राष्ट्रीय आंदोलन की भी स्थापना की। 30 जून 1960 को कांगो स्वतंत्र हुआ और लुमुम्बा उसका प्रधानमंत्री बना, लेकिन इसके शीघ्र बाद कटांगा प्रांत के गवर्नर ने इस प्रदेश को कांगो से अलग करने की घोषणा कर दी, क्योंकि उसे पश्चिमी देशों की उन कंपनियों का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने इस प्रदेश के विशाल खनिज स्रोतों तांबा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। इस अलगाव को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक रखे गए। कांगो सरकार के अनुरोध पर अलगाव और विरोधी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए वहां राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भेजी गई, लेकिन वह भी लुमुम्बा की रक्षा नहीं कर पाई और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना कटांगा को अलग होने से रोकने में कामयाब हुई। 1965 में कांगो की सेना के प्रधान कर्नल मोबुतू ने सत्ता हथिया ली और वहां का राष्ट्रपति बन बैठा। इस देश का नाम बदलकर जायर कर दिया गया। लुमुम्बा को अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण का महानतम नेता माना जाता है और विश्वास किया जाता है कि उसकी हत्या की योजना संयुक्त राज्य की गुप्तचर संस्था CIA ने बनाई थी। मोबुतू का तानाशाही शासन 1997 तक रहा, जब उसका तख्ता पलट दिया गया 1996 में रवांडा में हुतूस और तुलतित्सी लोगों के बीच जाति संहारक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें मोबुतू ने हुतुओं का साथ दिया। कबीलास ने, जिसे विभिन्न विरोधी दलों और तुतसी जाति का समर्थन प्राप्त था, 1997 में मोबुतू का तख्ता पलट दिया और राष्ट्रपति बन गया। अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देखकर उसने विदेशी कंपनियों की सहायता प्राप्त कर ली। 1951 में उसकी हत्या हो गई और उसके बाद उसके पुत्र ने सत्ता संभाली। अंगोला में भी इसी प्रकार के प्रयास हुए, जहां स्वतंत्रता के पश्चात अगोस्टिनहो नेतो के नेतृत्व में सरकार बनी, किंतु संयुक्त राज्य और दक्षिण अफ्रीका ने विरोधी दलों की सहायता की और उन्हें अस्त्र शस्त्र देकर इस सरकार को गिराने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका के सैनिक अंगोला की सीमा में घुस गए और अंगोला के सैनिकों से लड़ाई की। अंगोला ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए क्यूबा से सहायता देने का अनुरोध किया और इस प्रकार अंगोला की स्वतंत्रता को नष्ट करने के प्रयास असफल हो गए। कई वर्षों बाद अंगोला से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करने और वहां से क्यूबा की फौजों को हटाने के समझौते हुए। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उदय। नस्ली उत्पीड़न की सबसे घिनौनी प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिली। दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड या रंगभेद के नाम से जाने जाने वाली पृथक्करण की प्रणाली डेनियल मलान के नेतृत्व में 1948 में श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने स्थापित की थी और आगे आने वाली सरकारों ने भी इसे कायम रखा। अश्वेत लोगों से, जिनकी आबादी 80% से अधिक थी, मत देने का अधिकार छीन लिया गया। हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ खास इलाकों से अफ्रीकियों को निकाल दिया गया। शिक्षा में भेदभाव किया गया। श्वेत अश्वेतों के बीच विवाह को गैर कानूनी और अनैतिक घोषित कर दिया गया। तथाकथित साम्यवाद दमन अधिनियम, सम्प्रेशन ऑफ म्यूनिज्म एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विरोध का प्रतिबंध लगा दिया गया। साम्यवाद दमन अधिनियम के अंतर्गत केवल राजनीतिक लेखों पर ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अफ्रीकियों की गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध थे और उन्हें कहीं आने जाने के लिए अपने साथ एक पास रखना पड़ता था। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में जब रंगभेद की इस नीति पर प्रहार हुआ तो दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल से अलग हो गया। रंगभेद की नीति के खिलाफ हर जगह व्यापक विरोध हुआ और अधिकतर देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों से दक्षिण अफ्रीका पर सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। विश्व लोकमत और स्वयं अपने देश की जनता के दबाव में आकर पश्चिमी देशों ने भी यहाँ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। तथापि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी नीतियों की विश्वव्यापी भर्त्सना के बावजूद भी काफी समय तक अपनी अमानवीय नीति को अत्यधिक नृशंसता के साथ जारी रखा, जिसकी तुलना केवल नाजियों की नृशंसता से की जा सकती है। 1960 में शर्पविले शहर में रंगभेद नीति के विरोध में आयोजित एक रैली को तितर बितर करने के लिए सैन्य क्रूरता का सहारा लिया गया। इसके बाद भी क्रूर दमन की अनेक घटनाएं हुई। 1960 वाले दशक के आरंभ में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करके कारावास की लंबी सजाएं दी गई। बाकी नेता भूमिगत हो गए या दूसरे देशों में चले गए और इस दमनकारी शासन को खत्म करने के लिए वहीं से काम करने लगे। रंगभेद तथा श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन के खिलाफ चलने वाले संघर्षों को कई वर्षों तक अफ्रीकी राष्ट्रीय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी। 1955 में एक जनसभा कांग्रेस ऑफ द पीपल का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता के घोषणा पत्र फ्रीडम चार्टर का ऐलान किया गया। इस घोषणा पत्र में अफ्रीका की जनता के संघर्ष के बुनियादी लक्ष्यों को परिभाषित किया गया था। घोषणा पत्र में कहा गया था, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने संपूर्ण देश और पूर्ण विश्व की जानकारी के लिए घोषित करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका काले और गोरे उन सबका है जो इसकी सीमाओं में रहते हैं, और कोई भी सरकार अपनी सत्ता मनवाने का न्यायपूर्वक दावा नहीं कर सकती यदि वह समस्त जनता की इच्छा के आधार पर खड़ी ना हो। अन्याय और असमानता पर आधारित शासन ने हमारी जनता को भूमि, स्वतंत्रता और शांति के जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित कर दिया है। जब तक हमारे सभी लोग समान अधिकारों और समान अवसरों का उपभोग करते हुए भातृभाव से नहीं रहने लगते, तब तक हमारा देश खुशहाल या स्वतंत्र नहीं हो सकता। जनता की इच्छा पर आधारित लोकतांत्रिक सरकार की रंग, नस्ल, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना सबके जन्मसिद्ध अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती है, और इसलिए हम दक्षिण अफ्रीका के काले और गोरे सभी लोग मिलकर समान देशवासी और भाई के रूप में स्वतंत्रता के इस घोषणा पत्र को अपनाते हैं और हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम संपूर्ण शक्ति और साहस के साथ तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक कि इस घोषणा पत्र में निर्दिष्ट लोकतांत्रिक परिवर्तन संपन्न नहीं हो जाते। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब तक शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष की नीति अपनाई थी, लेकिन जब पशुबल के आगे समस्त शांतिपूर्ण विरोध नाकाम हो गए तो उसने सशस्त्र संघर्ष करने का निश्चय किया। उसने दक्षिण अफ्रीका में तथा अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों में गुरिल्ला छापमारों और सैनिकों को प्रशिक्षित किया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता गिरफ्तारी से बच निकले थे। एक सशक्त भूमिगत आंदोलन खड़ा हो गया और तोड़फोड़ की कई साहसिक घटनाएं हुई। इस संघर्ष में ANC को अफ्रीकी राष्ट्रों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा समाजवादी देशों से भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। दुनिया में लगभग पूरी तरह अकेले पड़ जाने और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के संघर्ष दिनों दिन अधिक प्रबल हो जाने के कारण अब गोरे शासकों को रंगभेद की नीति समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष नेल्सन मंडेला को लगभग 26 साल के बाद 1990 में कारावास से रिहा किया गया। वह दक्षिण अफ्रीका की जनता के संघर्ष के अदम्य प्रतीक बन गए थे। अक्टूबर 1990 में जब वह भारत की यात्रा पर आए तो उसे राष्ट्र अध्यक्ष के समान सम्मान दिया गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया गया और रंगभेद कानून रद्द कर दिए गए। बाद में नस्लवादी दमन की प्रणाली को समाप्त करने और एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए समझौता हो गया। विश्व के इतिहास में किसी भी घटना को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितनी दक्षिण अफ्रीका के चुनावों और नई सरकार के गठन को मिली। अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए। चुनाव में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और मई 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी लोकतांत्रिक सरकार का राष्ट्रपति बना। इस सरकार को राष्ट्रीय एकता की संज्ञा दी गई और इसमें दक्षिण अफ्रीका की लगभग प्रत्येक बड़ी पार्टी को प्रतिनिधित्व मिला। लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र के उदय को विश्व इतिहास के आधुनिक दौर की एक शानदार घटना माना जा सकता है। इसके साथ ही अफ्रीका की मुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई। जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद संयुक्त राज्य की सेनाओं ने उस पर कब्जा कर लिया। जापान की राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था और समाज में कई सुधार आरंभ किए गए जिन्होंने जापान में युद्ध के पश्चात हुए विकास की नींव डाली। बड़े जमींदारों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। श्रमिक संघों को काम करने की आज़ादी दी गई। शिक्षा पद्धति में सुधार किया गया और सैन्यवादी और उग्रवादी भावनाओं के संचार के लिए शिक्षा के दुरुपयोग को रोका गया। मई 1947 में एक नया संविधान लागू किया गया जिसे मुख्य रूप से जापान पर कब्जा करने वाले अधिकारियों, संयुक्त राज्य ने तैयार किया था। इस संविधान के माध्यम से जापान में लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था और सार्वजनीन वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। हालांकि राजशाही को कायम रखा गया था, किंतु सम्राट को समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और उसे केवल राज्य के प्रतीक का दर्जा दिया गया था। जापान के नए संविधान में युद्ध की नीति को त्याग दिया गया और जापान पर अस्थायी सेना या नौसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1952 में जापान पर संयुक्त राज्य का कब्जा समाप्त हो गया, किंतु एक सुरक्षा समझौते के तहत उसने जापान में अपने सैनिक तैनात करने का अधिकार कायम रखा। जापान पर लगभग हमेशा की परंपरावादी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है, जिसके कई प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद आमतौर पर यही दल सत्ता में आता रहा है। दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय दल समाजवादी दल सोशलिस्ट पार्टी है, जो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने और जापान को संयुक्त राज्य के साथ जोड़ने वाली संधि समाप्त कर देने का समर्थक है। जापानी साम्यवादी दल को भी जनता का अच्छा समर्थन प्राप्त है। कई अन्य दलों के साथ साथ ये दोनों दल जापान में किसी भी प्रकार के सैन्यवाद को फिर से पनपने देने के खिलाफ हैं। 1960 में जापान की संयुक्त राज्य के साथ सुरक्षा संधि का नवीनीकरण करने के समय पूरे देश में इसका विरोध हुआ। हाल के वर्षों में जापान में कई छोटे छोटे दक्षिण पंथी दल उभर कर सामने आए हैं, जो सैन्य शक्ति के रूप में जापान की महानता को दोबारा कायम करने और जनता के मानस में पारंपरिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने का समर्थन करते हैं, जिनमें से कुछ पर संबंध घनिष्ठ सैन्यवाद से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान विश्व की एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, जो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में संयुक्त राज्य की सर्वोच्चता के लिए एक चुनौती बन गया है। उसके आर्थिक विकास को अक्सर चमत्कार कहा जाता है। अधिकांश प्राकृतिक स्रोतों से वंचित होने के बावजूद इस देश ने प्रौद्योगिकी में अपार उन्नति की है, जो इसकी मुख्य संपदा बन गई है। निर्माण के ऐसे कई क्षेत्रों में जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, इसने प्रत्येक देश को पीछे छोड़ दिया है। आज विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में वह पश्चिम की सबसे अधिक उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विदेश नीति में उसने सामान्यतया संयुक्त राज्य का अनुगमन किया है। उसने चीन के साथ अपने संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 1970 के दशक के आरंभ में एक आधुनिक देश के रूप में उभरने के बाद से चीन का प्रमुख शिकार बना हुआ था। और इसके बाद उसने सोवियत संघ के साथ और विघटन के बाद रूस के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए हैं।